મારા જે હતી કો અપને પુત્ર સે જવાની પ્રાપ્ત હુઈ અપના બુઢાપા સે દે દિયા ઓર ફિર મારા જે હતી અપની પત્ની કે સાથ સુખ અપના જીવન વ્યતીત કરને લગે મારા જે હતી કોઈ સાધારણ સમ્રાટ નહીં થી કોઈ સાધારણ વ્યક્તિત્વ ભી નહીં થી એ સંપૂર્ણ ભૂમંડળ કે એકમાત્ર સમ્રાટ થી ચક્રવર્તી સમ્રાટ થી પહેલે આજ કે જિન્હોને શાસ્ત્ર કા પૂરા ઠીક સે સમજા નહીં પડા નહીં હોગા તો ઉન લોગો કો યે વિશ્વાસ કરના બહુ ડિફિકલ્ટ હોગા કે કૈસે પૂર્ણ પૃથ્વી કા રાજ પૂર્ણ સમસ્ત પૃથ્વી કા રાજ્ય એક વ્યક્તિ કો દિયા જાતા થા હા એ વાસ્તવિકતા હૈ મહારાજ હયાતિ સંપૂર્ણ પૃથ્વી કે એકમાત્ર રાજા થે ઓર ઉનકે અંદર થોડે છોટે છોટે સબ રાજા હુઆ કરતે થે છોટે છોટે રાજા હુઆ કરતે લેકિન વો એકમાત્ર સમ્રાટ થે ઓર લેકિન સમ્રાટ હોને કે બાવજૂદ ભી એસે જો ભગવાન કે જો ભક્ત હૈ મહારાજ હયાતિ હૈ યા ઓર ભી અન્ય મહારાજ અમરેશ હૈ યા મહારાજ ભરત હૈ તો વે લોગ અપની પ્રજા કા પાલન પુત્ર કે સમાન કરતે થે पुत्र के समान संतान की जैसे करते थे और इतना प्रेम देते थे इतना उनके सुख और दुख का इतना ध्यान रखा जाता था कि जिस तरह से व्यक्ति अपने घर के परिवारजनों के सुख दुख का ध्यान रखता है। आज एक परिवार का कोई स्वामी है तो वो अपने परिवार के लालन पोषण के लिए उनके सब तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है। उनको कोई कमी तो नहीं है, सब तरीके से खाने पीने को कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कुछ आवश्यकता है किस बच्चों का एडमिशन करवाना ये करवाना, जिस तरह से एक घर का स्वामी जिस तरह से अपने घर के परिवार वालों का ध्यान रखता है उसी तरह से ये जो राजा हुआ करते थे पहले के वो सारे अपने प्रजा का इसी तरह से लालन पालन करते थे। बहुत प्रेम से अपना मानते थे, अपना परिवार मानते थे, उनके दुख को अपना मानते थे। और ययाति महाराज को एक नया जीवन मिल गया था। शुक्राचार्य जी के शाप से वो बूढ़े हो गए थे लेकिन तुरंत उनको जब ये नया जीवन प्राप्त हुआ तो उन्होंने यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों को यथेच भोगा। अपने प्रजा का ध्यान भी रखते थे लेकिन इंद्रिय तृप्ति में जो उनकी आसक्ति थी, ये विषयों को भोगने में उनकी जो आसक्ति थी उसको भी खूब उन्होंने आस्वादन किया। देवयानी जो थी उनकी बहुत प्रिय पत्नी थी, शर्मिष्ठा भी थी लेकिन देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी और वे अपने प्रियतम ययाति महाराज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। मन वाणी शरीर और अन्य वस्तुओं के द्वारा दिन प्रतिदिन वो उनकी खूब अच्छे से सेवा करने लगी। अब स्त्री का एक कर्तव्य बनता है कि वह मन द्वारा वाणी द्वारा और शरीर द्वारा अपने पति की अच्छे से सेवा करें। वास्तव में अगर स्त्री को यदि भगवान के धाम जाना है तो उसको बस अपने धर्म पर रहना है, भगवान के धाम जाना है, उच्चतम लोकों में जाना है तो स्त्री को अपना केवल धर्म करना है। उसका धर्म क्या है? अपने पति की अच्छे से सेवा मन से। कोई भी कार्य में यदि मन लगा रहे तो कार्य अच्छे से होता है। आप सेवा कर रहे हैं लेकिन मन आपका कहीं और है तो वो सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि अपने पति जो होता है वो भगवान द्वारा भेजा गया एक मित्र होता है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है वो। और स्त्री क्योंकि गुरु की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकती, फिजिकल सेवा, इसलिए वो वैष्णव है तो वो उसके माध्यम से वो गुरु की भी सेवा करती है, पति की सेवा करने के माध्यम से वो गुरु की भी सेवा करती है। तो अपना मन लगाकर वो उसे पति की सेवा करनी चाहिए वाणी से। कभी भी वाणी के माध्यम से हमेशा अपने पति को सुख देना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वो अच्छे वचन हमेशा उसके मुख से निकले। ऐसा नहीं कि बेचारा थका मांदा आता है काम से और आते ही आ गए, क्या क्या किया आज, किसको फोन किया, क्या किया, ऑफिस में क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, और वे जब फोन कर रहे थे तब किससे बात कर रहे थे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पर हमेशा नैगिंग नहीं करनी चाहिए। एक गृहस्थ आश्रम पहले से दुख का आश्रम है, उसको सुखमय बनाने के लिए पत्नी को बड़ा सहायता पत्नी को बड़ी सहायता बन सकती है। उसको अपने वाणी के माध्यम से अपने पति की अच्छे से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द बोलने से वो पत्नी का भी एक फायदा है कि अगर मीठे शब्द इस्तेमाल करती है तो पति अपने कंट्रोल में रहता है। तो मीठे वचन अगर चिल्लाएगी तो पति को वैराग्य आ जाएगा कि ये क्या घर गृहस्थी का जाल है, लेकिन मीठे बातों से वो जो काम करवाना चाहती है वो अपने पति से करवा सकती है। लेकिन वही आप वही पत्नी अगर डांट कर दे भूल जाएगी, वो बोझ समझ करके करेंगे और दोबारा डिमांड करेंगे तो कुछ फुलफिल नहीं होने वाला है। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति से अच्छे वाणी में मधुर वाणी में बात करें। इससे जो पति को बेचारा बाहर से थका हुआ आता है, काम कर आता है, बाहर के टेंशन में जाल में रहता है, उसको थोड़ा सुख प्राप्त होगा, उसको लगेगा कि हाँ घर गृहस्थी सुखमय है। फिर शरीर के माध्यम से अपना सारा शरीर उसको अपने पति की सेवा में लगा देना चाहिए, ये स्त्री का धर्म है। यदि कोई स्त्री इस तरह से अपने धर्म का पालन करती है तो ये शरीर छूटने के पश्चात वो उच्चतम लोकों में जाती है, और यदि भगवान की भक्त है तो भगवान के धाम भी चली जा सकती है। राजा ययाति यद्यपि देवयानी के साथ इस तरह से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, पूरी तरह से भोगों में लिप्त थे, लेकिन वे भगवान श्री हरि के यज्ञ भी करते थे। पहले के राजाओं में बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किया करते थे, और उस यज्ञ आयोजन करने के माध्यम से भगवान की साधुओं को बुलाया जाता था और भगवान की कथाएं वहां पर होती थी। तो उस कथाओं के माध्यम से उनको भगवत ज्ञान मिल जाता था, और वहां पर उपस्थित सबको प्रजा को भी मिलता था। तो साधुओं को यज्ञ में बुलाया जाता था, साधु लोग प्रवचन करते थे। श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो दिन में वे यज्ञ करते थे और रात में वो लोग कथाएं सुनते थे। तो महाराज ययाति ने बड़े बड़े साधुओं को आमंत्रित किया था और भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, और साधुओं को ब्राह्मणों को यथोचित और प्रचंड मात्रा में उन्होंने धन धान्य सब कुछ दिया था। ययाति महाराज भगवान के भक्त ही थे, वे समझ रहे थे कि ये जो संसार है, जिस तरह से आकाश में बादल कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, उसी तरह से ये जो पूरा संसार है भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, और उसमें ये संसार जो है ये एक स्वप्न की भांति है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग हमारे एक स्वप्न आता है, तो सपनों में हम लोग इस तरह से स्वप्न में रहते हैं कि हम वही वास्तविक जीवन है हमारा। स्वप्न में हमारा एक शरीर रहता है, हम लोग पता नहीं किस कहाँ घूमते रहते हैं, तो वो स्वप्न ही हमारा वास्तविक जीवन हो जाता है। लेकिन उठते ही यदि हम जग जाते हैं तब वो स्वप्न टूट जाता है, तब हमें लगता है कि अरे वो स्वप्न था, ये वास्तविक जीवन है, लेकिन वास्तव में ये भी एक स्वप्न जैसा ही है। लेकिन उसको कौन समझ सकता है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। इसको रियलाइज करना इस सबके बस की बात नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी बता दे कि महाराज ययाति को ये रियलाइजेशन था, ये जो सब है ये सब स्वप्न जैसा ही है, और वास्तविक शाश्वत कोई है तो वो है मात्र भगवान श्री हरि। और भगवान ययाति महाराज निष्काम भाव के भक्त, निष्काम भाव से भगवान की पूजा करते थे, कोई कामना नहीं थी। यद्यपि संसार के सारे सुख भोग रहे थे, देवयानी जैसे सुंदर पत्नी उनकी सेवा में थी, सारा सुख ऐश्वर्य था, लेकिन ऐसे ययाति महाराज भगवान के निष्काम भक्त भी थे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उन्हें कोई कामना नहीं थी, भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, अनन्य भाव से अपने भगवान की पूजा इत्यादि करते थे, साधुओं से कथा श्रवण करते थे और हृदय में एक भावना, एक हृदय में उनकी भावना रहती थी कि कब मैं कृष्ण का दास, कब मुझे भगवान का धाम मिलेगा, कब मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा, ऐसी ऐसी हृदय में उनकी भावना होती थी। बाहर से प्रतीत होता था कि ये पूरी तरह से भोगों में लिप्त है, लेकिन अंदर से इनकी भावना थी, लेकिन विवश थे वो। इस तरह से भावना होती थी लेकिन विवश थे, क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी उनके जीवन में कि वो पूरी तरह से अपने आप को सारी घर गृहस्थी की सारी चीज़ों को छोड़कर वो भगवान का भजन कर सके। क्योंकि इतनी सुंदर पत्नी थी और सब तरह से संतुष्ट करती थी, तो उनका कोई भी उनकी कोई भी इच्छा, सारा सुख मिलता था। तो सारा सुख मिलने के बाद उनकी ये इच्छा नहीं होती थी, मतलब अंदर से भले इच्छा हो लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, विवश थे। तो ऐसी एक बार जब यज्ञ हो रहा था उसमें साधुजन आए थे, तब उन साधुओं ने महाराज अम्बरीश का चरित्र उनको सुनाया और महाराज ययाति ने जब चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का चरित्र सुन लिया तब उनको अपने अधा पतन पर नजर गई। तब वे अपने आप को देखने लगे, उनकी आंखें खुल गई। कैसे खुली? जब साधु ने यह बताया कि एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे महाराज अम्बरीश, समस्त भूमंडल के वो भी राजा थे, लेकिन वे अपने सारा समय, वो अपना सारा समय भगवान की भक्ति में लगाते थे, हमेशा साधुओं से कथा श्रवण करते थे, 2400 घंटा लगे रहते थे, हमेशा हाथों से भगवान की सेवा करते थे, भगवान के लिए खुद भोग बनाते थे, उनके मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान का अपने हाथों से श्रृंगार करते थे और घंटों खड़े रहकर भगवान के दर्शन करते थे, अपने पैरों से भगवान के धामों में घुमा करते थे, एकादशी व्रत अच्छे से करते थे, हमेशा भक्तों की संगति में रहते थे और राज्य का किसी प्रकार का कोई चिंता उनको नहीं रहती थी। वो भगवान के भजन में रहते थे और भगवान उनका राज्य संभालते थे। तो ऐसा चरित्र, ऐसा महान चरित्र जब ययाति महाराज ने सुना तब वे विचार करने लगे, अरे वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे, मैं भी सम्राट हूँ, लेकिन मेरी दशा क्या है और वो कैसे है। तब उन्होंने विचार किया कि हाय रे जीवन, कैसा नरक का जीवन मैंने अपना बना लिया है, कितना सुखी हो सकता हूँ मैं, लेकिन ये क्षणिक सुख के लिए, एक स्त्री पुरुष के संसर्ग संपर्क से जो सुख मिलता है उस सुख के लिए मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। तब महाराज ययाति को वैराग्य आया, अभी वैराग्य उनके हृदय में आ गया है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कैसे बताए कि अभी उनको ये सब सुख सुविधा या मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, अभी तुमसे अभी उनको कुछ, मुझे अपनी पत्नी से कोई सुख नहीं चाहिए, ये इसको कन्विंस कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या थी ययाति महाराज के सामने कि उनको तो वैराग्य आ गया और उनको भी भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं था, ये कन्विंस हो गए थे, वे समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ी, ये जो गृहस्थ आश्रम में जो सुख है, स्त्री पुत्र आदि का जो सुख है, ये आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है, इनको सब कुछ मानना, इनको अपने इष्ट देव मानना। ययाति महाराज की स्थिति ये थी कि देवयानी और ये सब चीजों को अपने इष्ट मान गए, इष्ट जैसे ही समझ रहे थे और उसी को भोग रहे थे, लेकिन महाराज अम्बरीश का चरित्र सुनने के बाद अब उन्होंने अपना निर्णय कर लिया। जैसे हम लोग निर्णय करते हैं कि हमने शुरुआत में निर्णय करना, हमें 16 माला जप करना ही करना है, 4 नियमों का पालन करना ही करना है, एक निर्णय है हम लोगों का, इसलिए हम लोग करते हैं, किसी भी स्थिति में हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से महाराज ययाति ने एक बार अपनी पत्नी को बुलाया कि भृगु नंदिनी आओ, तुमसे आज मुझे कुछ आवश्यक बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल चीजें बात करनी है। तो वह कहते हैं, भृगु नंदिनी, मैं तुम्हें एक गाथा सुनाना चाहता हूँ। गाथा? आज पतिदेव कोई पिक्चर देख लिया क्या? नहीं भृगु, नहीं। पृथ्वी में मेरे ही समान बहुत सारे विषयी लोग रहते हैं, तो उसमें से ही ऐसी एक विषयी व्यक्ति, विषयी बकरे की कथा है, तो मैं तुम्हें वो गाथा सुनाना चाहता हूँ। वैसे भृगु नंदिनी, जिन लोगों ने वानप्रस्थ लिया, अभी स्टार्ट कर रहे हैं कथा सुनाने से, अपना डायग्राम बना रहे हैं, जो लोग वानप्रस्थ लेते हैं ना, वानप्रस्थ लेते हैं, घर गृहस्थी को त्याग करके वन में जाकर रहते हैं, वे लोग हमेशा घर गृहस्थी में फंसे लोगों पर बहुत विचार करते हैं कि बेचारों का कल्याण कैसे होगा। तो गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ लेने वाले जो लोग रहते हैं, प्रभुपाद जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी कई बार घर छोड़ने की बात करेंगे आगे जाके, श्रील प्रभुपाद जी के परपक्ष में कई बार घर छोड़ने की बात है। तो वास्तव में मुझे रियलाइजेशन आया कि लगा मुझे ऐसे कि प्रभुपाद जी परमहंस निश्चित है, भगवान के महाभागवत भक्त है, लेकिन उन्होंने भी घर गृहस्थी का स्वाद चखा हुआ है, घर गृहस्थी के दुखों को देखा हुआ है, और उन्होंने वानप्रस्थ लिया और संन्यास भी लिया है। तो श्रील प्रभुपाद जी बार बार यहाँ पर कहेंगे कि 50 साल के बाद घर छोड़ना चाहिए, 50 साल के बाद घर छोड़ना चाहिए, और क्या रखा है घर गृहस्थी के सुख में? कुछ नहीं है। वास्तव में सुख है वानप्रस्थ जीवन में, जो व्यक्ति आ जाता है तो उसको रियलाइजमेंट आता है कि अरे क्या घर गृहस्थी के अंधकूप में फंसा हुआ था मैं। तो प्रभुपाद जी बार बार लिखे हैं इसके, कई सारे परपट में इस सेक्शंस में बारंबार घर गृहस्थी को घर अंधकूपम करते हैं, छोड़ो घर को छोड़ो बात करते हैं। वानप्रस्थ जो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ व्यक्ति होता है, वो अपने पश्चाताप करता है कि मैंने अपना इतना सारा जीवन कैसे अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगा दिया। ये वानप्रस्थ व्यक्ति सोचता रहता है कि मैंने कितना, जो उसको सुख मिलता है भगवान की भक्ति में सुख मिलता है, तो विचार करता है अरे मैंने क्या कर दिया, इतना सारा जीवन 25 साल 30 साल मैंने घर गृहस्थी के तुच्छ सुखों को भोगने के व्यतीत कर दिया, और वास्तविक सुख जो भगवान की भक्ति में है उससे वंचित रहा। अरे अभी जो मुझे सुख मिल रहा है वो कितना दिव्य है, लेकिन मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 25 साल पता नहीं मैंने कैसे कैसे भोगों को भोगा है, कैसे कैसे कामनाएं मेरी थी उसको मैंने पूरा किया है, लेकिन अब मेरी ऐसी स्थिति आ गई मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो अब मैं पछता रहा हूँ मेरा कितना समय बर्बाद हो गया। वास्तव में सत्य है ये। प्रहलाद महाराज आदेश देते हैं कि जितनी हो जल्दी हो सके गृहस्थ जीवन को छोड़ना चाहिए। ये आदेश दोनों के लिए है, ये नहीं समझना चाहिए किसी पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए भी आदेश है। क्यों? हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम। यदि कोई लगातार या स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ रहने पर जोर देता है तो समझना चाहिए कि वो अपने आत्मघात कर रहा है, अपने आत्महत्या कर रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 50 वर्ष समाप्त होने के बाद अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर वन में चले जाए अपने भजन में। देखिए, विचार कीजिए कि भले हम लोग सब कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जो चेतना है, हम लोग की जो मति है, उस तरह से कृष्णा में नहीं लगी है जिस तरह से एक सन्यासी की लगी है। विचार करने वाली बात है कि एक सन्यासी 3 से 4 घंटे सोता है मात्र, और अधिक से अधिक समय वो क्या करता है, भगवान के गुणों को सुनता है, पढ़ता रहता है, उसको कथा करते रहता है। तो उसकी मति जिस तरह से उसकी मति भगवान में लगी है, कि हम लोगों की वैसी लगी है? क्यों? क्योंकि हमारे जिम्मे बहुत सारे काम हैं, घर हस्ते के काम पड़े हैं, बच्चों को देखना, ये देखना, वो देखना, घर व्यस्त में दुनिया भर के काम होते हैं, और उसमें से हम लोग थोड़ा समय निकाल के 2 घंटे निकाल के किसी तरह जप कर लेते हैं, थोड़ा समय निकाल के कथा सुन लेते हैं, थोड़ा समय निकाल के 15 मिनट पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसी मति तो नहीं लगती हमारी ना, जैसे एक सन्यासी की मति भगवान में लगती है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम गृहस्थों को आदेश देते हैं कि जरा विचार करो कि ये घर गृहस्थी का जीवन जो है ये ग्रह अंधकूपम है। विचार करना चाहिए कि एक अंधेरा कुआ है, गहरा कुआ है, गहरा कुआ, बहुत गहरा कुआ है, उसके अंदर कोई मान लो अपने आप को देखिए, अगर हम पड़े हुए हैं उसमें, हम आवाज लगा रहे हैं कि भाई मुझे निकालो, निकालो मुझे इसमें से, आवाज क्या कुछ सुनाई देगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग है कि ग्रह अंदर, ऐसे अंधकूप में हम लोग है। तो प्रहलाद महाराज रिक्वेस्ट करते हैं कि 50 साल हो जाए तो प्रयास करना चाहिए निकल जाए। और वानप्रस्थ आश्रम ऐसा कि अपनी पत्नी को लेकर जा सकते हैं, पत्नी को लेकर वृंदावन जाइए और जो घर गृहस्थी के, जो घर गृहस्थी के जो टेंशन है, जो काम है, उसको छोड़ दीजिए। अगर प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसको बैंक में डालिए, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, और इस इंटरेस्ट में वृंदावन धाम में जाइए और अपना भजन कीजिए। तो वो कहते हैं, यदि महाराज कहते हैं भृगुनंदिनी, हे प्रिय, एक था बकरा, वो वन में अकेला ही घूम रहा था अपने सबसे इच्छिष्ट वस्तु को ढूंढने के लिए। वो बकरा घूम रहा था वन में, और उसको ऐसे कुएं के पास आया जहां पर एक बकरी कुएं में पड़ी हुई थी। यहाँ पर महाराज यदि अपने आप को बकरा बता रहे हैं। देखिए, अपनी पत्नी को कन्विंस करना है उनको कि अभी लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। बहुत हुआ तमाशा, बहुत हुआ, बहुत बर्बाद कर लिया जीवन, लेकिन अभी से चलो हम दोनों भगवान के भजन करते हैं अच्छे से। इस बात को कन्विंस करने के लिए यदि महाराज ये इस सिद्धांत को बता रहे हैं, इस कथा को बता रहे हैं। महाराज यदि अपने आप को बकरा बता रहा है कि मैं बकरा हूं, और देवयानी की तुलना एक बकरी के साथ करते हैं। मनुष्य भी एक बकरे जैसा ही होता है, संसार में इधर उधर सुख ढूंढते हुए घूमता रहता है, कई सुख मिल जाए, अरे कहाँ है, कहाँ सुख मिलेगा। और उस बकरी की स्थिति भी उसी तरह रहती है, वो भी एक पुरुष के ऊपर आश्रित रहती है, वो पूरी तरह से बकरी अर्थात स्त्री पुरुष केयर में रहती है और उस पर आश्रित है कि उससे उसके आश्रय में वो सुख प्राप्त करती है। पुरुष की देखभाल में ही स्त्री का वास्तव में हित है। तो देवयानी ने तो राजा ययाति से प्रार्थना की थी कि कृपा करके आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो राजा ययाति ने महाराज ययाति ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस तरह से उस पर लिप्त हो गए कि उसके साथ साथ शर्मिष्ठा के साथ और अन्य सखियों के साथ भी उनको सहवास करते रहते थे वो। और इतना सब होने के बावजूद भी, इतने सारे स्त्रियों के संपर्क में रहने के बावजूद भी, इन सारे स्त्रियों से सहवास करने के बावजूद भी, ये जो महाराज ययाति थे वह संतुष्टि रहे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस तरह से महाराज ययाति ने अपने आप को जबरदस्ती अपने आप को यहां से अलग कर रहे हैं, अपने आसक्ति को तोड़ रहे हैं, जबरदस्ती हटा रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम लोग जबरदस्ती इस ग्रह अंधकूपम को त्याग कर हम लोग बाहर निकले इसमें से। वास्तव में भगवान गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो उपासित महामुनियों के संग में आना चाहिए। महामुनि अर्थात जो भगवान के महान भक्त है, जो केवल और केवल भगवान के ही बारे में चर्चा करते हैं, उसके अलावा उनको सांसारिक जो चर्चा है उनसे कोई मतलब नहीं है, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, ऐसे साधुओं के संपर्क में आना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे मार्ग बताइए किस तरह से ये मेरी मेरा चित्त भगवान में लगे। तो साधुओं के पास बैठकर यह प्रश्न करना चाहिए गृहस्थों को कि देखिए जाल में होना और जाल का अनुभव करना ये अलग अलग बात है। हम सब जाल में हैं, लेकिन जाल का रियलाइजेशन होना एक दूसरी बात है। क्योंकि रियलाइजमेंट कैसे आएगा, जब साधु की संगति में बैठेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। साधुओं को समर्पण करना पड़ेगा और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी पड़ेगी। यदि आप जाल को नहीं काट सकते तो अपने जाल को लेकर साधुओं के पास ये साधु काट देंगे। हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है भैया, ये यदि महाराज तो बकरा बकरी कथा सुनाकर अपनी पत्नी को समझा दिए। हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपनी पत्नी को बकरी बनाए, हम खुद बकरे बनाए अपना जाल काट दें ना। हमें यहाँ पर यदि महाराज भी साधुओं की कृपा से ही उनकी स्थिति हुई है। जब अमरीश महाराज चैत्र साधुओं के मुख से सुना तब उनका चित्त परिवर्तन हुआ, सब कुछ बदल गया। इसलिए हमें साधु संघ में भगवान के भक्त महान भक्तों के संपर्क में आना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, बहुत बड़ी सफलता है गृहस्थ जीवन की। वास्तव में हम लोगों के पूरा विश्वास नहीं है अब तक कि ये संसार दुखमय है, नहीं है विश्वास। जब ये विश्वास हो जाएगा कि ये जो घर गृहस्थी है, ये जो संसार के जो कुछ भोग है, इससे पतन होगा, ये अधोगति में ले जाएंगे, जब विश्वास हो जाएगा पूरी तरह से, तब हम लोग वास्तव में उस तरह से भक्ति करेंगे जैसे सन्यासी करते हैं। यदि महाराज कहते हैं कि वो बकरा बड़ा कामी था, वो प्रिय वो बकरा, अभी डायरेक्टली ये कथा के माध्यम से उसको समझा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि वो बकरा मैं था, कथा बता रहे हैं कि वो जो बकरा था बड़ा कामी था। वो बकरा सोचता था कि ये जो बकरी कुएं में फंसी हुई है, किसी तरह से इसको निकाल लो। तो किसी तरह से इसको निकाल लेने में कैसे निकालूं, बकरा विचार कर रहा था। तो उसने अपने सिंह के माध्यम से, उसके पास जो सिंह थे उस सिंह के माध्यम से उसने रास्ता बनाया और वो बकरी को बाहर निकाला। तो स्त्री के प्रति जो अभी किसी व्यक्ति को स्त्री चाहिए, मतलब शादी विवाह करना है, तो उसके लिए सो कितने सारे व्यवस्था करनी पड़ती है, आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ती है, अच्छा मकान बनाना पड़ता है, उसके सुख सुविधा की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये इन सारे कार्य करने में वो इतना उलझ जाता है कि अपने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक जो लक्ष्य है उसको भूल जाता है। रास्ते है कि मैं यहाँ पर कोई स्त्रियों का ये नहीं कर रहा हूँ, पुरुषों को ये नहीं कर रहा हूँ, स्त्रियों को भी अपनी तरफ से ये समझना चाहिए, ये दोनों की तरफ से है। ये देखिए ये आ सकती है ना, ये एक जगह खुल गई, फिर भी मान लीजिए कि आपको वैराग्य आ गया लेकिन आपके पत्नी ने या पति ने आपको पकड़ के आसक्ति, उनकी आसक्ति आप में है तो आसक्ति तो है ना, उनको भी बहरा के आ जाता दोनों, फिर अच्छे से गाड़ी चलेगी। आप इस सिद्धांत को समझ रहे हैं कि आपकी आसक्ति है और आपकी आसक्ति अपने पति में है और पति की आसक्ति आप में है, तो ये रही स्थिति आपकी, ठीक है। आपको वैराग्य हो गया लेकिन आपके पति को या आपकी पत्नी को तो वैराग्य नहीं हुआ ना, तो वो तो आपको पकड़े हुए हैं, तो जाल तो है ही। तो जब आप दोनों जब साधुओं की कृपा से दोनों जब भजन करने लगेंगे, टाइट भजन करने लगेंगे, तब गृहस्थ आश्रम जो संन्यास आश्रम जैसा कार्य करने लगेगा। तो जब सुंदर बकरी कुएं से निकली तो उस बकरी ने सोचा कि इस बकरे को ही अपना स्वामी बना लूं, क्योंकि ये जो बकरा था वो दिखने में बहुत सुंदर था, पुष्ट पुष्ट था, और स्त्री को मनाने में, देखिए स्त्रियों को खुश रखने में, स्त्रियों को पटाने में एक आर्ट है, और कुछ लोग संसार में ऐसे लोग होते हैं जो इसमें पीएचडी कर चुके हैं, स्त्रियों को सुखी रखने में, स्त्रियों को सुखी रखने में वो खूब जानते हैं किस तरह से स्त्रियों को सुखी रखना है, और रखते हैं खूब बढ़िया से रखते हैं स्त्रियों को। ऐसे कई सारी स्त्रियों को अपने पति से कोई कंप्लेंट नहीं है, इतने सुख से रखते हैं, इतना प्रेम से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये बकरी विचार कर रही थी कि जब मैंने अपने इस बकरे को चूज कर लिया, ये मेरा बकरा मेरा पति बनेगा, तो ये अन्य जो बकरियाँ थी उन्होंने भी देखा कि अरे इतना 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 बड़ा हीरो है ये, तो उन लोगों ने भी इसको अपने उन लोगों ने भी मतलब शर्मिष्ठा इत्यादि अन्य लोगों ने भी इनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब ये जो बकरा था ये इतने सारे बकरियों के बीच में इसका जो काम वासना थी वो हाइट बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ गई, और ये खूब मजे से इन सबका आस्वादन करता रहता था। और एक दिन क्या हुआ, उस बकरी को जो उसकी पहली बकरी पत्नी बकरी थी उसको पता चला कि ये मेरा पति जो है ये दूसरे के साथ ही अधिक समय दूसरों के साथ सहवास बिताता है, ये तो धोखेबाज है, तो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है मेरे साथ। तो वो बकरी उसको छोड़कर चली जाती, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में मनुष्य घर गृहस्थ में इसीलिए है क्योंकि वो विषयों का सेवन करना चाहता है। अगर विषयों का सेवन नहीं करना चाहता होता तो वो सिंह अपना ब्रह्मचारी रहता और अपना जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता, लेकिन क्योंकि उसको विषयों के संपर्क में रहना है, विषयों को भोगना है, इसीलिए वो गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता, जितना भी भोग सुख उसको भोगते रहेगा वो संतुष्ट नहीं होता। यहाँ तक कहा गया है कि यदि मनुष्य की तुलना बकरे से की जाती है, और यदि वो बकरा बकरे का मान लीजिए कुछ समय के बाद वध होने वाला है, उसको मार डालने वाले हैं लोग, लेकिन यदि उस बकरे को सहवास करने का बकरी के साथ अवसर प्राप्त हो तो वो मरने के समय भी उस पत्नी का संग अपने दूसरी बकरी का संग करना नहीं छोड़ेगा। कुछ समय के बाद वो मरने वाला है बकरा, लेकिन उसको यदि स्त्री का सहवास मिल जाए तो वो उसको नहीं छोड़ेगा और उसमें लिप्त रहेगा। तो उसी तरह से हम लोगों की भी यही दशा है, जिस प्रकार कोई अभागा मनुष्य, यदि कोई मनुष्य है जिसको भूत प्रेत ग्रस ले तो जिस तरह से पागल रहता है, जिसको भूत प्रेत ने पकड़ लिया तो वो कैसे होता है, एक पागल जैसा बिहेव करता है, उसी तरह से एक भौतिकवादी व्यक्ति अगर स्त्री के चंगुल में है, मतलब स्त्री के संग के लिए लालायित है और वही उसको सुख चाहिए, तो उसी तरह है जैसे बकरे की स्थिति है। वो भूत प्रेत अगर किसी व्यक्ति को पकड़ ले उसकी जो स्थिति हो जाती है पागल हो जाता है, उस तरह से ये स्त्री सुख के लिए व्यक्ति पागल हो जाता है। और स्त्रियों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसी कोई बकरियां रहती है जिनके लिए अपने पति का संग और उनके साथ सहवास करना ही उनका जीवन का सब कुछ सर्वस्व होता है, उसके अलावा कुछ और किसी को मानती नहीं है। और जब ये और फिर ये सब करने में फिर क्या होता है, झगड़ा होता है क्या, जब देखता है कि एक वो बकरी या बकरा दोनों में से कोई एक अगर किसी और की तरफ आसक्ति उसकी हो जाती है और वो अपनी बकरी को छोड़कर किसी और बकरी के पास चला जाता है, तब क्या हो जाता है, तब कलह चालू होता है। यहाँ पर जब देवयानी ने देखा था कि उसके पति शर्मिष्ठा और अन्य उसकी सहेलियों के साथ सहवास कर रहे हैं, तब उस बकरी ने, वो बकरी ने उस बकरे को छोड़ दिया और वो कहाँ चली गई, अपने पिता के पास चली गई, अपने स्वामी के पास चली गई। फिर यति महाराज कहते हैं, हे देवयानी, वो बकरी थी ना, उसका पिताजी एक ब्राह्मण था और वो पता नहीं दुनिया भर के जुगाड़ जानता था, उसके पास बहुत सारी चीजें रहती थी। उसने क्रोध के मारे उसने उसका अंडकोश नष्ट कर दिया। जब उसको पता चले कि उसकी बेटी बकरी को छोड़कर वो बकरा किसी और बकरी के पास जा रहा है, तो उसने अपनी शक्ति लगाकर उस बकरे का अंडकोश नष्ट कर दिया। फिर उसको पता चला, फिर उसको लगा कि अरे इसका अंडकोश नष्ट करके मैंने अपनी ही बेटी का नुकसान कर दिया है, तो अपनी कामिनी बकरी को तृप्त करने के लिए फिर से उसने अंडकोश जोड़ दिया। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वो बकरा फिर से उसी बकरी के साथ जो उसको कुएं में मिली थी उसके साथ कई हजार वर्षों तक, 1000 वर्षों तक सुख भोगता रहा। लेकिन आज तक वो बकरा संतुष्ट नहीं हुआ। अब आ गए, अब वो बताना चाहते हैं कि हे देवयानी, जैसे उस बकरे की स्थिति है ना, वैसे ही मेरी स्थिति है। अब मैं तुमको क्या बताऊं, जब कोई अपनी पत्नी के स्नेह से आबद्ध होता है तब वो काम वासना में इस तरह से लिप्त रहता है कि फिर वो उसको जीत नहीं पाता। ये जो आसक्ति है और ये जो काम वासना की ज्वालामुखी इतनी भयानक है कि इसको जीत पाना, इससे निकलना बहुत कठिन है। इसलिए वैदिक सभ्यता में बताया गया है कि 50 साल के बाद उसको अपनी पत्नी को त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि यदि वो वैसे ही अपना जीवन कंटिन्यू रखता है, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो उसी संसार चक्र में फंसा रहेगा। मनुष्य का जो जीवन है वो तपस्या के लिए है। मनुष्य का जीवन सिर्फ स्त्री का आलिंगन प्राप्त करना या स्त्री को पुरुष का आलिंगन प्राप्त करना ही नहीं है, उनकी मीठी बातें, उनकी मीठी मीठी बातों में पूरा दिन बिता देना, यही जीवन, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये कार्य तो हमने पशु की योनि में भी यही किया है, बस वहां पर, यहाँ पर पत्नी थी, वहां पर बकरी थी और आप बकरे थे। यहाँ पर आपको मनुष्य शरीर मिला है, पहले आप बकरे रहे होंगे, कोई बकरी मिली होगी तो उस समय भी वैसे ही चला होगा। तो हमें मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर का या मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, बकरे और बकरी जैसा जीवन नहीं बिताना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना है, ये शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ता है किस तरह से मेरा ये शरीर छूटने से पहले कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं। अगर ये नहीं संभव हुआ तो फिर से किसी माँ के घर में जाना पड़ेगा, 9 महीने उल्टा टंगना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, ABCD सीखना पड़ेगा। वो सीखने के बाद फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर घर गृहस्थी चालू हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे या इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में जन्म ले लें तो क्या करोगे, अफगानिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म मिल गया तो क्या करेंगे। यहाँ पर भारत में जन्म मिला है, भक्तों की संगति मिली है, सब कुछ मिला हुआ है, इसी जन्म में अपने अपना जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक समय भगवान की कथा में व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर ये चांस छूट गया तो पता नहीं फिर दोबारा अवसर कब मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी जैसी सुविधा आप भी मिल रही है, ऐसी भक्तों की संगति, ऐसा आपसी प्रेम जो यहाँ पर उपस्थित इस समय मिल रहा है, वैसी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में मिले ना मिले। इसलिए आपको इस समय मिला है तो अपने इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। पता नहीं भक्तों की संगत में मिल रही है। खैर भगवान तो गारंटी दिए है कि भैया भजन अगर आगे मैं भक्तों की संगति दूंगा, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क ले। घर पर घर गृहस्थी का जो वास्तविक सुख है वह स्त्री सुख है, उसको त्याग कर भक्तों की संगति में अपने आध्यात्मिक जीवन में 2400 घंटे मग्न रहने के लिए घर गृहस्थी की आसक्ति को तोड़ना बहुत आवश्यक है। हे सुंदरी, यदि कोई अपनी हे सुंदरी मेरी भी यही दशा है, वो कहते हैं कि मेरी भी यही दशा है देवयानी, यदि कोई अपनी पत्नी के तथाकथित सौंदर्य में फंसा रहता है तो गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य है और वह अपना उस सौंदर्य के पीछे लट्टू होकर वह अपना जीवन बिना मतलब का बर्बाद कर रहा है। प्रहलाद महाराज बार बार बारंबार बारंबार प्रभुपाद जी इस बात को लिखे इस बात में कि घर गृहस्थी के सुख को छोड़िए। अगर आप लोगों का 50 साल पूरा हुआ है तो अपनी पत्नी को लीजिए और जहाँ पर अच्छे से 24 आवर्स भजन हो सकता है ऐसे स्थान पर चले जाइए। अगर घर गृहस्थी में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, तो पता नहीं चेतना कहाँ लगी रहेगी, क्योंकि भगवान का धाम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आसान है एक दृष्टि से उन लोगों के लिए जो 2400 घंटा अपने आप को भगवान के श्रवण कीर्तन अध्ययन में अच्छे पछे रखते रहते हैं, और जिनका चिंतन, जिनको और किसी संसार घर गृहस्थी की चिंता नहीं है, केवल भगवान का ही चिंतन करना है, ऐसी स्थिति में होना पड़ेगा। तब जाकर और ऐसे स्थिति में काफी लंबे समय तक समय बिताएंगे तब जाके ऐसी स्थिति आएगी। जैसे अजामिल को जब विष्णु दूतों ने बचाया तब अजामिल ने निर्णय कर लिया कि मैं बच गया। उसकी क्या स्थिति थी, पहले तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, सब कुछ ठीक था उसके जीवन में, फिर ये एक वेश्या के पीछे पागल हो गया और अपने उसने जीवन के 88 साल इंद्र तृप्ति में उस इंद्र तृप्ति में बिता दिए, और उसके बाद जब वो मरने वाला था तो उसकी उसने भक्ति की होगी, उसके वजह से उसने उसके मुख से नारायण का नाम निकल गया, उसने अपने बच्चे नारायण को बुलाया, लेकिन वहाँ पर विष्णु दूत आ गए और विष्णु दूत और यमदूतों के बीच में संवाद सुनकर अजामिल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो फिर से उसने वही कंटिन्यू नहीं किया जीवन, उसने 13 साल तक हरिद्वार में एकांत में परिवार को छोड़ दिया और 13 साल तक हरिद्वार में भक्तों की संगति में अपना बचा हुआ शेष जीवन व्यतीत किया। और 13 साल के बाद जो स्थिति, मतलब जो व्यक्तित्व जो चार दूत भगवान के चार दूत उसको उस समय समझाने के लिए आए थे, उसको बचाने के लिए आए थे, वही चार दूत अजामिल को लेने भी आ गए 13 साल के बाद। लेकिन 13 साल उसने एकांत में साधुओं की संगति में बैठकर रोज मंगल आरती करना, सब करना, भागवत को अच्छा सुनना, साधुओं की संगति में अपने डाउट क्लियर करना, अखंड जप करना, घंटों सात दस बारह बारह घंटे जप करना, इस तरह से वो रोज करता हो अचानक और फिर भगवान के धाम में चला गया। तो इस तरह से हम लोगों को हमारे जीवन को शेप करना चाहिए। अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर हम ये कर सकते हैं तो गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। उस समय अगर घर गृहस्थी में रहते हुए किसी के मति भगवान में लगी हुई है 2400 घंटा, तब वो पत्नी भी धन्य है, तब वो घर गृहस्थी धन्य है, तब छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है और हमारी आसक्ति हमारा हृदय में जो काम वास्तव में भी वैसी ही है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तब ऐसी स्थिति में अच्छा है कि हम इस ग्रह अंधकूपम को त्याग कर भगवान का भजन करने का निकल जाए, क्योंकि ये अवसर अगर चला गया हाथ से दोबारा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो और भी शेष प्रवचन है, यहाँ महाराज और भी तिखी तिखी बातें करेंगे, लेकिन वो थोड़ा शाम वालों के लिए तीखा पंद्रह छोड़ दीजिए, सबको और थोड़ा, सबको मिलने दीजिए, शाम वाला डोसा और हैवी है,